ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मायापुर उत्सव के बाद स्थान भक्तों का सबसे बड़ा जमघट था। अनेक भक्त सुदूर स्थानों से प्रभुपाद से भेंट करने आए थे और 600 से अधिक भक्त उस इमारत में ठहरे हुए थे। कीर्तन खूब जोर शोर से हुआ। राधा गोविंद विग्रहों के समक्ष खड़े हुए प्रभुपाद प्रसन्न लग रहे थे। तीसरी वेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का चित्र था। प्रभुपाद बोले कि वे उस चित्र को रथ यात्रा के दिन देखने को उत्सुक थे। जब प्रभुपाद विशाल हरे रंग के व्यास आसन पर बैठे तो पहले तो इतने भाव विभोर हो गए कि वे बोल नहीं सके। फिर उन्होंने कहा कि पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब मुझे इस नए मंदिर में ले आए, क्योंकि जब मैं पहले पहले यहाँ आया था तो मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में एक मंदिर बनाऊं और मैं अवसर की तलाश में था। उन्होंने अपने कुछ प्रथम निस्सहाय प्रयासों का उल्लेख किया कि वे मैनहट्टन में 25 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा एक भूखंड खरीदना चाहते थे, किंतु उन्हें धन नहीं प्राप्त हो सका। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई स्थान नहीं था, मंदिर की तो बात ही क्या, मेरे लिए रहने तक के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः उस दशा में मैं भारत वापस जाने की सोच रहा था। वस्तुतः प्रति सप्ताह में जहाज की कंपनी जाया करता था। इस प्रकार यह एक लंबी गाथा है कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में पहले एक मंदिर बनाने का संकल्प लेकर आया था, किंतु आज से 10 वर्ष पूर्व सन 1965 में संभव न था, किंतु कृष्ण की कृपा से मेरे गुरु महाराज के अनुग्रह से आपको स्थान प्राप्त हुआ है। अतः मैं आप लोगों को इस मंदिर का निर्माण करने के लिए धन्यवाद देता हूं। धन नहीं था, मेन बात यहां रही है, प्रभुपाद वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, परंतु उन्होंने एक बात कही कि 10 वर्ष पूर्व सन 1965 में ये संभव न था। मतलब बिगनिंग के अंदर जो है मनी की प्रॉब्लम थी, बट लेटर ऑन धन जो है उपलब्ध होना शुरू हो गया। क्या धन आसानी से उपलब्ध हो रहा है या कठिनाई से उपलब्ध हो रहा है, आज भी और तब भी, व्हाट वाज द सिचुएशन? इसमें दो बातें निकल के आ रही है। एक बात है कि डिवोटीज का एफर्ट कितना है, और दूसरी है कृष्ण कृपा। दो ही बातें हैं। अगर डिवोटीज एफर्ट नहीं करते हैं तो कृष्ण की कृपा भी कंपैरेटिवली कमी होती है, क्योंकि एफर्ट्स पे ही डिपेंड करता है। आप किसी से मिलोगे, हाँ कभी कभी होता है, वंस इन ए ब्लू मून ऐसा भी होता है कि आपने किसी के लिए कोई काम नहीं किया, बट somebody comes कहता है जी मैं आपको ना एक जमीन देना चाहता हूँ, मैं आपको एक मंदिर देना चाहता हूँ, मैं आपको ये देना चाहता हूँ। तो कभी कभी होता है, बट उसके बैकग्राउंड में भी डिवोट, हालांकि डायरेक्ट एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा, डायरेक्टली हम उससे जाके नहीं मिले, डायरेक्टली हमको एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा, बट इनडायरेक्ट एफर्ट है। उसको पता है कि इस्कॉन नामक संस्था के अंदर डिवोटीज बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, रथ यात्राएं निकालते हैं, कीर्तन करते हैं और लोगों को भक्ति भाव में लगा रहे हैं, चाहे उसके साथ ना हुआ हो, पर एक इंप्रेशन है, एक जनरल मूड है लोगों का कि अच्छा इस्कॉन से हैं, मतलब उनका जो भाव चेंज हो जाता है, चाहे हमारा उनसे कभी डायरेक्ट लिंक ना हुआ हो या कभी उनके पास लोग ना गए हो, बट उनका जो है भाव इस्कॉन का नाम आते ही थोड़ा चेंज हो जाता है कि यस ये लोग जो है बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत एफर्टफुल एसोसिएशन है। तो यहां जो है प्रभुपाद का जो विजन था, उस विजन को अगर आज हम देखें, उसमें जो एक बात आ रही है कृष्ण कृपा, और दूसरी बात आ रही है गुरु महाराज के अनुग्रह से, गुरु महाराज के अनुग्रह से। प्रभुपाद ने एनविजन किया था कि दिल्ली में 10 मंदिर होने चाहिए। एक समय था दिल्ली में एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में 10 टेम्पल होने चाहिए। एक विचार प्रकट किया था, एक भाव था कि दिल्ली के अंदर जो है इतना बड़ा दिल्ली है, दिल्ली और उसके आसपास कम से कम भी तो 10 टेम्पल होने चाहिए। उनका आशीर्वाद, उसके ऊपर हमारे गुरु महाराज की मेहनत और भक्तों पर उनका आशीर्वाद, तो आज भक्तों ने दिल्ली में कितने मंदिरों का अरेंजमेंट हो गया, कितने मंदिर हैं हमारे पास, कैन समबडी काउंट दिल्ली एनसीआर में 14 टेम्पल्स, 10 से क्रॉस करके। अगला लक्ष्य क्या है, 14 ही रहने हैं कि आगे बढ़ाना है, 21 21 की जरा बड़ा शुभ होती है गिनती, और ये हो जाएंगे। आप देखिएगा, गुड़गांव में एक मंदिर की योजना थी, आज 2 हैं। इसी तरह जो एनसीआर है उसके अंदर गाजियाबाद में एक था, साहिबाबाद हो गया, एडिशनल 2 हो गए, 2 टेम्पल्स नाउ। तो आने वाले कल में टेम्पल्स की गिनती जो है बढ़ेगी, पता लगेगा कि कल पंजाबी भाग में भी 2 हो गए एक और बगल में बन गया है, सो दैट प्रीचिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज मैं तो नहीं आया काफी दिन से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ जो है खत्म हुआ है दिसंबर में, तो कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अभी तक चल रहा है अभी तक चल रहा है, क्योंकि मुझे याद है अच्छे तरीके से कि इस साल तो मैं नहीं कह सकता, पर प्रीवियस ईयर्स में कि नवंबर से ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता था, मैसेज मिलता था कि आप जो है 9:15 बजे कथा समाप्त कर दीजिए, क्योंकि भक्तों को प्रसाद पा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे निकलना है। सो मच वाज द विगर, कितना उसमें जो है एफर्ट था, कितनी उसमें एक विश्वास था कि हम लोग जो है अगर समय अनुसार जाएंगे तो हम लोग अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, उसके लिए पूरी प्लानिंग, पूरी मेहनत। तो ये सब जो है, ये सब गुरु महाराज के अनुग्रह से, प्रभुपाद के अनुग्रह से, कृष्ण कृपा से, टॉप से लेके बॉटम तक परंपरा चली हुई है, उसी के अनुसार जो है सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ जो है इन्होंने कहा प्रभुपाद ने, मैं आप लोगों को इस मंदिर के निर्माण करने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो इसी तरह मैं कभी भी महाराज से मिलता हूँ, महाराज के साथ होता हूँ, तो जो भक्त मिलते हैं तो महाराज उनसे कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मतलब भक्त महाराज को थैंक यू करे तो बात समझ में आती है, पर महाराज भक्तों से कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन सो मच एफर्ट्स, कॉन्जिगेशन मेंबर से, पब्लिक से, तो एक एक धन्यवाद का जो वातावरण है वो चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई इस कांड डिवोटी जाता है तो पब्लिक ये फील करती है कि सम दे आर वेरी हम्बल, वेरी शीलता सिखाई जाती है, उसे सब ट्रेनिंग होती है तो सब सीखते हैं, वन इज वेरी हम्बल। वो लोग एलिगेशन भी लगाते हैं, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, बट हम्बली उनको जो है डिबेट किया जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है, गुस्सा नहीं करते कभी। ये बात मैंने देखा कि लोग जो है कई बार बड़े क्वेश्चंस करते हैं ऑफवर्ड, ये भड़क जाएगा, गुस्सा कर लेगा, आंसर नहीं कर पाएगा। पर मैंने टीचिंग में जब लोग लगे होते हैं तो मैंने देखा है कि हमारे जो डिवोटीज हैं वो बड़ा हम्बली उनको डील करते हैं, बड़ा हम्बली समझाते हैं, अगर नहीं समझा पाते हैं तो कहते हैं अच्छा हम अपने सीनियर से पूछ के आपको इसका आंसर देंगे, डोंट वरी बट यू विल बी आंसर्ड। तो ह्यूमिलिटी जो है, जो जो एक विनयशीलता है, विनम्रता है, वो हमारे कॉज को जीतना जीतती है विविन द सिचुएशन। और आज वही वजह है कि आप देखिएगा कि 14 टेम्पल्स की स्थापना जो है हो चुकी है, और आगे उम्मीद है कि आज ग्रेजुअली हौले 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 बढ़ता चला जाएगा। एनसीआर बहुत बड़ा है, अगर आप एनसीआर की बात करेंगे तो एनसीआर में पानीपत भी आता है, मेरठ भी आता है, झज्जर भी आता है, बहुत सारे एरियाज आते हैं, उनको काउंट करेंगे तो 20 हो जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे तो 20 हो जाएंगे। अपने व्याख्यान के बाद में प्रभुपाद ने जोर देकर बताया किस प्रकार गुरु महाराज और अचानक कृष्ण भक्त आत्माओं के भौतिक संसार के निरंतर दुखों से रक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा इस अवसर को हाथ से मत जाने दो, तथा कथित वैज्ञानिकों दार्शनिकों राजनेताओं से दिग्भ्रमित होकर मूर्ख न बनो, कृष्ण भावनामृत को अपनाओ और यह केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु की कृपा से और कृष्ण कृपा से आप सभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यही रहस्य है। एक संडे के पहले सैटरडे को एक प्रोग्राम हुआ था इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो उसका जो कार्ड छपा था उसमें सिर्फ कॉर्पोरेट्स थे, ओनली 150 सीट्स वर थे, 150 सीटें थी और सिर्फ कॉर्पोरेट्स थे, जनरल पब्लिक नहीं थी और कोई नहीं था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के सीईओ एंड प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन, वही लोग थे सब। मैं जब संडे को शाम को महाराज से मिला तो महाराज ने वो कार्ड दिखाया हमको कि एक कार्ड था और उसके अंदर मिनिस्टर्स भी आए हुए थे, जयंत सिन्हा वाज देयर, मिनिस्टर और भी थे। जब 10 फोटो लगी हुई थी उसके अंदर, 10 फोटो, 5 ऊपर की लाइन में, 5 नीचे की लाइन में, और 10 फोटो में से जो है सबसे पहली फोटो जो है गुरु महाराज की थी। ही हैड टू स्पीक और महाराज ने जब लेक्चर दिया है, महाराज ने वहां पे जो बातें कही हैं उसको सुनने के बाद जो कॉर्पोरेट से दे वर हाईली इंप्रेस्ड, और हमारा जो मिड डे मील चल रहा है उससे वैसे ही बहुत बड़ा इंप्रेशन है कॉर्पोरेट्स के अंदर, दे आर वेरी हैप्पी विद इट एंड दे सपोर्ट, उन्हीं की सपोर्ट से काम चल रहा। तो मैंने देखा कि महाराज की जो हम्बलनेस है, जो महाराज की जो ह्यूमिलिटी है वो हमें सिखाती है कि वी शुड फॉलो द फुटस्टेप्स। और ये सब क्या होता है कि कृष्ण कृपा गुरु की कृपा से ही संभव है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक सिंपल सी बात कहता हूं मैं आपसे कि सब लोग धाम जाना चाहते हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं? हर एक व्यक्ति जाना चाहता है। धाम जाने के लिए कौन सी दो चीजें एसेंशियल हैं? ओनली टू थिंग्स, दो चीजें जरूरी हैं, दो चीजें जरूरी, फिर उसके बाद पिरामिड में नीचे उसके बाद आएगा। सो टॉप के ऊपर दो है सिर्फ, टॉप पे धाम जाना है, उसके नीचे दो चीजें हैं। नहीं, आप उससे नीचे आ गए, आप उससे नीचे स्टेप पिरामिड में ना, उससे नीचे के स्टेप पे आ गए। सिर्फ दो चीजें हैं, एक चीज है तीव्र उत्कंठा, मींस ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मुझे भाव जाए, मुझे धाम जाना, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वो कुछ भी के अंदर भजन क्रिया आ जाती है, 16 राउंड्स आ गए हैं, सूचन आ गया है, नेटिव वर्शिप आ गई है, चैंटिंग आ गई है, हियरिंग आ गई, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, सारी चीजें आ गई उसके अंदर। दैट इज दैट मेरे को जाने की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जैसे बच्चा कहता है मुझे IIT में एडमिशन लेना ही है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे IAS बनना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, ऑल सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स आर डन। तो तीव्र उत्कंठा चाहिए, जो कि हमें कंपलसरी है कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जब हम डिजायर हमारी आ जाती है, तीव्र उत्कंठा आ जाती है, तो उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कृष्ण कृपा। उनकी कृपा होगी तो अंदर जा पाएंगे उनके घर में, उनके धाम में, नहीं होगी तो नहीं जा पाएंगे। और कृष्ण कृपा का माध्यम कौन है? माध्यम है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उनके माध्यम से कृष्ण कृपा मिलती है। तो यहां पे प्रभुपाद की इंटेंस डिजायर क्या थी? इंटेंस डिजायर कि गुरु महाराज के सपनों को साकार करना, इस डिजायर थी ना, मैं अपने गुरु के सपनों को साकार करूं, उसके अनुसार कार्य करूं। उन्होंने उनके आदेश से 1 मिलीमीटर भी बाएं नहीं, 1 मिलीमीटर भी दाएं नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। टफ से टफ सिचुएशन को फेस किया, किसके लिए? गुरु महाराज की सपनों को साकार करने के लिए। एंड अगर हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है तो देन वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग्स। ये गुरु महाराज के सपनों को साकार करने के लिए हर तरह की मेहनत करनी, चाहे कुछ भी करना पड़े, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम्स आए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम करना पड़े। टेम्पल की अथॉरिटीज हैं, आपको मुश्किल से मुश्किल काम बताती हैं, उसको हंसते हुए स्वीकार कर लेना। ये नहीं कहना टेम्पल अथॉरिटी को जी इफ ये हो जाता, बट ये हो जाता, लेकिन ये हो जाता, परंतु ये हो जाता, दिस नॉट दिस, नो, बिकॉज दे हैव ए विजन। वो विजन परंपरा से आता है। तो जो चर्चा आ रही है यहां पर, ये गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से आप सभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं, बात समझ में आ जाएगी। आपको विदेश यात्रा करनी है, कितने लोगों ने करी है? How many people have gone abroad? विदेश यात्रा के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक पासपोर्ट, एक वीजा। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास है क्योंकि आपकी कंट्री ने आपको दे दिया है, वीजा आपको लेना है। वीजा के लिए आप एम्बेसी जाते हो तो कहते हैं जी हमारा ये फॉर्मेट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्म्स हैं, ये आपके डाटा डॉक्यूमेंट चाहिए, इनको प्रोवाइड कर दीजिए तो हम आपको वीजा दे देंगे। आपने अपनी बुद्धि लगा के सारा कुछ तैयार किया और सबमिट कर दिया। वो सबमिट करना क्या वीजा मिलने की गारंटी है? पक्का है कि मिल जाएगा? उसमें जो वहां पे कॉन्सुलेट बैठा है, ऑफिसर बैठा है, उसकी मर्सी चाहिए, तभी तो वीजा मिलेगा ना। उसने रिजेक्ट कर दिया। अजी मैंने तो सारे काम किए, तो उसने कहा देखो जी ये नुकसान है, ये खराबी है, ये खराबी है। अब घर आ गए, माथा पकड़ के बैठे, उधर जाना बहुत जरूरी, उत्कंठा बहुत तेज, नहीं मिल रहा है चांस, नहीं मिल रहा है चांस, तो आप एजेंट एम्प्लॉय करते हो। उसको सब पता है, ऑल एवरीथिंग इज परफेक्ट, वो आपको सारे फॉर्म्स में कोई गलती नहीं निकलती, हर चीज एक्यूरेट रहती है, और आप जो है वीजा अप्लाई करते हो और मर्सी होती है, वीजा मिल जाता है। हु इज दैट एजेंट इन दिस करंट सिनेरियो? दैट एजेंट इज द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ही नोज कि टेक्निक क्या है धाम जाने की। तो आप जब जो है गुरु को स्वीकार करते हो, गुरु के और शर्त क्या है, आपने एजेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी उनको फॉलो किया, फिर सारे फॉर्म भरे, फिर आप वीजा मिल गया। यहां गुरु महाराज जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वाया टेंपल अथॉरिटीज, वो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करेंगे तो आपको दीक्षा मिल जाएगी। दीक्षा मिलने का मतलब है नौ युग, दीक्षा मिलने का मतलब परमानेंट नहीं, वीजा हो गया स्टेप वन है। उसके बाद कितना आप सेवा में रहते हो, कितना कहना मानते हो, कितना आगे बढ़ते हो, कितने कितने स्ट्रिक्टली सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, देन यू प्रोग्रेस इन द लाइन। पर इन दोनों कामों के लिए, सारे कामों के लिए एसेंशियल क्या है? गुरु की कृपा और फिर कृष्ण की कृपा। उस गुरु की कृपा को स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना, के अर्थ क्या है कि हम आपकी कृपा चाहते हैं, कृपा चाहने की कंडीशंस क्या है वो आप बता दीजिए। कंडीशंस क्या है? व्हाट एवर आई से शुड बी फॉलोड। तो गुरु जो कहते हैं उस आदेश का पालन करना। मैं क्या चाहता हूं गुरु से वो आदेश नहीं करवाना कि महाराज मैं ये चाहता हूं, आप बताएं। टेंपल अथॉरिटी के पास है, प्रभु जी मैं ये चाहता हूं, मैं कर लूं क्या? वो कहते हैं चलो भक्ति में लगा है, टूटेगा इससे अच्छा तो कर ले, कोई बात नहीं चलेगा। बट That is not the system. System जो है गुरु महाराज से आदेश लेके भी चलना, वो भी step two है, वो भी दूसरी category के लोग हैं। जो top category के devotees हैं उनका फर्ज क्या है कि mood को समझना, बस कि महाराज का mood क्या है, गुरु का mood क्या है, मैं सारे कार्य कर। और सबसे important point क्या है कि हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम लोग गुरु महाराज से जाके पर्सनली इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाते हैं, बिकॉज ना हमारे पास टाइम है और ना उनके पास टाइम है, सो बिजी विद सो मैनी जॉब, सो मैनी जॉब्स। तो सिस्टम क्या बनाया कि आप जो है जो उनके अंडर टेंपल अथॉरिटीज हैं उनके एसोसिएशन में रहिए और उनसे इंस्ट्रक्शंस लीजिए कि सर गुरु महाराज क्या चाहते हैं आप हमें बताएं, बिकॉज आपका डायरेक्ट लिंक है उनके साथ, यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय हिम, सीनियर डिवोटीज हैं, टेंपल अथॉरिटीज हैं, सो उनके साथ चलना कंधे से कंधा मिला के, ताकि प्रचार आगे बढ़े, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आगे हो, टेंपल सुचारू रूप से चले, लोग ज्यादा से ज्यादा टेंपल में आए, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना व्रत को अपनाए, तो यही जो है सपनों को साकार करना। तो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां कहा जा रहा है यस्य देवे पर भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। उन महान आत्माओं के अंदर जिनकी भगवान और गुरु दोनों में निश्चित भक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनकी भगवान और गुरु दोनों में निश्चित भक्ति है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार स्वयं में प्रकट हो जाता है। श्रुताचार उपनिषद 6.23 कि भगवान में भक्ति है, भगवान में श्रद्धा है और गुरु में श्रद्धा है। गुरु मीन्स अथॉरिटीज में श्रद्धा है, परंपरा में श्रद्धा है। परंपरा अथॉरिटी से स्टार्ट, अपने हमसे डिवोटी से स्टार्ट होती है, पर इंस्ट्रक्शन के लिए अथॉरिटी से स्टार्ट होती है। तो यहां कह रहे हैं अतः जो गुरु पूजा हम कर रहे हैं वह आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है, ये असली शिक्षा है। प्रतिदिन गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्या चितते करिया है क्या, जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि को उपहार दिया है जन्म जन्मांतर से मेरे भगवान हैं। मैं आपसे निसंकोच कहता हूं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, मेरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज के वचनों में मेरे विश्वास के कारण मिली है। आप भी इसे जारी रखें तब आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसे जारी रखें। किसे जारी रखें? कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज के वचनों में मेरे विश्वास के कारण मिले। आप भी इसे जारी रखें। तो क्या जारी रखना है, किसे जारी रखना है, कंटिन्यू किसे करना है? गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास, उसको टूटने नहीं देना, उसको गिरने नहीं देना है। That is the most important factor in Krishna Bhavanamrita. Krishna consciousness में एक बहुत important factor है। Usually क्या होता है कि दीक्षा हो गई, चलो जी काम निपटा, अब तो फुर्सत है, अब क्या करना है, अब तो मेरा धाम पक्का हो गया, तो दीक्षा हो ही गई। दीक्षा होने का मतलब यह है स्टेप वन, अभी आप पहली सीढ़ी पे हो। दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सीधा धाम पहुंच जाओगे। दीक्षा का मतलब है अब आप उस आपको वो उस सीढ़ी मिल गई है जिस सीढ़ी पे चढ़ना है, पहली सीढ़ी पे आपने कदम रख दिया। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, जैसे जैसे गुरु महाराज के वचनों पे, अथॉरिटीज के वचनों पे विश्वास करेंगे, वैसे वैसे जो है कृष्ण आपके प्रति प्रेम की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे। किसी ने एक प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न था। उसने कहा कि मैं तो कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, आदेश का पालन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं तो कृष्ण से बड़ा प्रेम करता हूँ। अब आप बताइए कि मुझे कैसे पता लगे कि कृष्ण मेरे से प्रेम करते हैं? हाउ डू आई नो? लव तो, प्रेम तो बाइलेटरल दो तरफा होना चाहिए ना, एक तरफा तो नहीं होना चाहिए ना, इट हैज टू बी बाइलेटरल। फिर मैं ही प्रेम करता हूं, दूसरा तो मुझसे प्रेम करता नहीं है, तो प्रेम कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो मुझे कैसे पता लगे कि कृष्ण मेरे से प्रेम करते हैं? हाउ डू आई नो दैट? उसका आंसर दीजिए आप। कृष्ण मेरे से प्रेम करते हैं, तो व्हाट इज द आंसर? कैसे मुझे पता लगेगा? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। आपके पास दो सर्वेंट हैं, एक सर्वेंट जो है आपका कहना मानता है, इफ किंतु लेकिन परंतु नहीं लगाता, दूसरा अपनी मर्जी से चलता, काम तो करता है पर अपनी मर्जी से करता है। आपने कहा ले बेटा 50,000 रुपए हैं, जाके बैंक में जमा करा दे। गया बैंक में, गया जमा कराए, आपको पर्ची ला के दे दी, सर ये पैसे है, रसीद। 2 बजे बैंक को बंद होता है, 1 बजे आपने बोला था, 2 बजे 2:15 बजे रसीद आपके हाथ में है। दूसरे सर्वेंट से कहा नेक्स्ट डे भैया बैंक में पैसे जमा करा दे, 12 बजे घर से भेज दिया, 2 बजे बैंक बंद होता है, 2 बजे आ गया, पैसे पकड़ा दिया आपके हाथ, सर बैंक बंद हो गया था। अरे भाई तू 12 बजे का गया है, वो 1 बजे गया हुआ जमा करा के, लाइन में लग के पैसे जमा करा के आ गया, तू 12 बजे का गया हुआ है और तू अभी तक जो पैसे जमा नहीं करा पाए, इतनी लंबी लाइन थी क्या आज? नहीं सर ऐसा है, मैं यहाँ निकला ना तो मौसी का लड़का मिल गया था, वो मुझे अपने घर ले गया, अगर मौसी ने चाय बना ली, कोई बिस्किट खिलाए, ये बातें करने लग गए, वो वहीं टाइम 2 बज गए, बैंक तो बंद हो चुका था। मतलब अब आप पहले नौकर को काम दोगे, दूसरे नौकर को काम दोगे, किसको काम दोगे, किसको काम देंगे आप? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? किससे प्रेम करेंगे, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? तो जब कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं तो आपको सेवा ज्यादा देते हैं। जिसको सेवा नहीं मिलती ना, उससे कृष्ण प्रेम नहीं करते। डिस्कार्डेड है, परे बैठ भैया तू बेकार आदमी, तू कोई सेवा नहीं करता, वहां परे बैठ। तो जिसको सेवा ज्यादा मिलती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है सर्व करने के, जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है कार्य करने के लिए कृष्ण भावनावृत में, इसका मतलब है कृष्ण उससे प्रसन्न है। दिस इज अ बेसिक फंडा, ये समझ लेना चाहिए। तो सेवा जो है उसके लिए तो कुश्ती होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, और सेवा मुझे ना दे के दूसरे को कैसे दे रहे, मैं करूंगा, फाइट फॉर इट। ये नहीं कि सेवा का नाम आया तो पतली गली से निकल ये कौन करेगा, जो करने हैं करने दो, मैं कैसे ठीक हूं। नो, यू शुड फाइट फॉर इट। प्रभु जी मुझे सेवा दीजिए ना, आई सर जो कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त करना है, मुझे सेवा करनी है, दूसरा प्रेम प्राप्त करता जाए मुझे मिले ना, ये क्या बात हुई। तो जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे तो अथॉरिटी भी आपको कॉल करे, प्रभु जी आपकी सेवा बहुत अच्छी थी, सेवा और है, एंड यू शुड हैप्पीली ग्रैब इट, हैप्पीली एक्सेप्टेड। तो यहां यही चर्चा आ रही है कि आप इसे जारी रखें, अर्थात जो गुरु महाराज के वचन हैं, जो अथॉरिटीज के वचन हैं, जो कहते हैं कि यस ये सेवा करनी है, ये कार्य करना है, ये हमको जरूरी है, तो उसको करना है। मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट इट वेरी हैप्पीली, मजबूरी में नहीं, क्या फंसा दिया मेरे को, दिख गया मैं तो मुझे ही फंसा दिया मुझे फंसा दिया। नो, आपने मेरे को सेवा क्यों नहीं दी, आपने दूसरे को कैसे दे दी, मैं भी तो था लाइन में, मेरे को दीजिए प्रभु जी, आई विल सर्व। दैट शुड बी द एटीट्यूड। तब श्री प्रभुपाद ने पूरी 12 मंजिली इमारत का चक्कर लगाया, वे बहुत कम बोले, किंतु जो कुछ उन्होंने देखा लगभग सभी को अनुमोदित किया। ऐसा लगता था कि उनके शिष्य उनकी ओर सारी व्यवस्था ठीक से देख रहे थे। उनका आवास सुव्यवस्थित था, बैठक के लिए अलग कक्ष था, विश्राम के लिए अलग, सारी व्यवस्था ठीक से देख रहे थे। ऑल अरेंजमेंट शुड बी डन एक्यूरेटली, नो मिस्टेक्स। अपने डेस्क के सामने बैठ के उन्होंने पूछा, तो न्यूयॉर्क में मुझे फिर रुकना है? मंदिर के अध्यक्ष आदि केशव स्वामी ने कहा, श्री प्रभुपाद आपकी विजय पूर्ण वापसी है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ मेरा मनोभाव ऐसा ही है। भक्तों को उत्सुकता थी कि वे कमरों की विशेषताएं बताएं, जैसे खिड़की से दिखाई देने वाले दृश्य और अपेक्षाकृत शांति। रामेश्वर स्वामी ने कहा, अनुवाद कार्य करने के लिए बहुत ही शांत है। श्री प्रभुपाद बोले, हाँ ठीक है, जब मेरे गुरु महाराज ने प्रस्थान किया तो मैं अकेला रह गया था, तो उन्होंने मेरी देखभाल के लिए कितने ही गुरु भेज दिए हैं, आप सब मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं। अंडरस्टैंड करिए कितनी हम्बलनेस है। तो उन्होंने मेरी देखभाल के लिए कितने शिष्य भेज दिए हैं, कितने चेले भेज दिए हैं, नहीं कहा, क्या कहा? कि उन्होंने मेरी देखभाल के लिए कितने ही गुरु भेज दिए, आप सब रिप्रेजेंटेटिव हो मेरे गुरु के, इससे ज्यादा हम्बलनेस नहीं हो सकते। विनयशीलता विनम्रता से ज्यादा नहीं होती। इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। एक भक्त ने कहा हम लोग गुरुदास हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा तो आप मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं आपका बहुत अधिक कृतज्ञ हूं। मुझे कभी कभी अपना बचपन याद हो आता है, मैं अपने पिता का बहुत अधिक लाडला पुत्र था। मैंने पुस्तक में इसे स्वीकार किया है, मेरे पिताजी बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मैं जो कुछ मांगता था वे मुझे देते थे। वे मुझे कभी दंड नहीं देते थे, केवल प्यार देते थे। तब मैंने मित्र बनाए और मेरा विवाह हुआ। कृष्ण की कृपा से मुझे हर एक प्यार करता था। मैं इस प्रदेश में बिना किसी जान पहचान के आया, अतः कृष्ण ने मुझे प्यार देने के लिए कई पिता भेजे। इस प्रकार मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। अंत समय में मैं अगर शांति पूर्वक रह रहा हूं तो यह कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा से हर चीज संभव है, इसलिए हमें कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रहना है, तब हर चीज संभव होगी। हम्बलनेस, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मेरे चेले हो ना, चलो मेरी सेवा करो, ऐसा तो नहीं बोला ना। मेरे शिष्य हो ना, चलो मेरी सेवा करो, ऐसा तो नहीं बोला ना। ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। उनको पिता के समान दर्जा दे रहे, जैसे मेरे पिता मेरा कहना मानते थे और मेरे को जो मांगता था देते थे। ऐसे जो है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे प्यार देने के लिए कई पिता भेज दिया। बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है, बहुत सारी बातें इस पैराग्राफ से। आजकल प्रकरण चल रहा है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं सीखने के लिए कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि स्थानीय। ब्राह्मण जो है, जो भक्त है, उसको विद्या और विनय से संपन्न हो। संपन्न मीन्स फुल, मतलब ऐश्वर्य होना चाहिए। किसका? विद्या का और विनयशीलता का। हम कहते हैं ऑपुलेंट है, ऐश्वर्यशाली है। किसमें? धन के लिए। बिल्डिंग्स हैं, बैंगलोर्स हैं, फार्म हाउसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं वगैरह वगैरह। नो, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है समथिंग इन हाई अमाउंट, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपके पास है, हाईएस्ट अमाउंट है। तो ऐश्वर्य किसका चाहिए? विनम्रता का। ऐश्वर्य चाहिए नॉलेज ऑफ कृष्णा, नॉलेज ऑफ जीवा, नॉलेज ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति, जीव और भगवान का ज्ञान। इसमें संपन्नता चाहिए और विनयशीलता होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी हम्बल। वो हम्बलनेस ही आपको जीतती है। मैं इसको प्रैक्टिकली हम्बलनेस को आजमा के भी देखा है, अपने पर भी कई बार देखा है, लोगों पर भी देखा है। कई बार जो है हम्बलनेस आपको बहुत पे करती है। हमको याद है अच्छे तरीके से, हम लोग वृंदावन जा रहे थे, चार गाड़ियां थी पीछे की। हमने एक जगह पे गाड़ी रोकी टोल टैक्स पार करने के बाद, जो होटल में टोल टैक्स है। तो पीछे वाली गाड़ी जो है उसने भी इधर को मोड़ दिया। लेफ्ट में एक गाड़ी जाए जिसमें कि दो भैंसे बंधी हुई थी, वो एक्सीडेंट होते होते बचा। और वो थे जाट गुजर थे, वो उतर के मारने मरने, वो उनसे जो ड्राइवर था उसको मारने मरने को उतारू हो गए। तो आई वाज स्टैंडिंग देयर, तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा भैया थोड़ा हाथ वाथ जोड़ो, ठीक हो जाएगा मामला। तो मैंने कहा भाई ऐसे गलती हो गई है, इसको क्षमा कर दो। तो हम गाड़ी यहाँ खड़ी करते, हमारे को ज्वाइन करने के लिए इसने इधर गाड़ी लगा दी। उसने कहा तो जी आपने हाथ जोड़ दिए हैं तो हम आपको छोड़ रहे हैं, और हम यहीं कबड़ा कर देते हैं। दिस इज प्रैक्टिकली आई हैव एक्सपीरियंस। तो ये बातें हमें प्रभुपाद ने सिखाई हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के प्रति इतना हम्बलनेस है। गुरु महाराज का एक बार ऐसे में आता है तो लिखते हैं प्लीज एक्सेप्ट हम्बल ऑफिस। तो मुझे बड़ी शर्म आती है, भी काहे को लिख रहे हो? मैं आपको हम्बल ऑफिस दूंगा कि गुरु महाराज उल्टा हम्बल ऑफिस करते हैं। बट दिस इज हिज हम्बलनेस। गुरु महाराज के इतनी हम्बलनेस है, इतने हम्बल है, इतने हम्बल है। आई लेट टू सी ए लिविंग पर्सन हु सो हम्बल देन। उन जैसा हम्बल गुरु देखना जो है मेरे को बड़ा मतलब कठिनाई है। मैं देख नहीं पाया अभी तक, पिछले 32 साल से मैं इस काम के साथ हूँ। जितना मैंने हम्बलनेस गुरु महाराज में देखी है मैंने किसी में नहीं देखी। आई हैव नॉट सीन। और ये बात जो है प्रभुपाद ने सिखाई है, और जिन्होंने प्रभुपाद को फॉलो किया है उन्होंने ये बात समझी है। और हम डिवोटीज भी जो है अगर हम्बल होंगे तो हम बहुत सारे काम निकाल सकते हैं, बहुत प्रचार कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओनली थिंग इज कि वी हैव टू लर्न इट, और लर्निंग कहाँ से आती है? परंपरा से आती है। गुरु के शिष्य हैं, शिष्यों के शिष्य हैं, अथॉरिटीज हैं, वो हमको सिखाती है कि हम्बल कैसे होना है। तो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के 10 दिन के पड़ाव के बीच में भक्तों में विजय उल्लास का भाव बना रहा। भक्तों को नगर पालिका से अनुमति मिल गई थी कि 5th एवेन्यू पर रथ यात्रा निकाल सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि न्यूयॉर्क संसार का सबसे महत्वपूर्ण नगर है और एक गगनचुंबी इमारत संसार के लिए कृष्ण भावनामृत का दीप स्तंभ होगी। अब तो इस्कॉन के पास मैनहट्टन में भी एक निजी गगनचुंबी इमारत थी। 5th एवेन्यू में रथ यात्रा निकालने की उन्हें अनुमति थी और प्रभुपाद स्वयं वहां उपस्थित थे। एक दिन सवेरे प्रभुपाद वहां गए, रथ तैयार हो रहे थे। जयानंद और उनके आदमियों ने उन्हें विशाल पहियों का उत्कृष्ट रूप दिखाया। जयानंद ने जो श्वेत रक्तता केसर कैंसर की बीमारी के अंतिम दौर में चल रहा था, रथ यात्रा के संगठन और रथों की तैयारी के पर्यवेक्षण में अपने आप को इस तरह निमग्न कर रखा था कि प्रभुपाद और अन्य सभी भक्तों का अत्यंत प्रिय बन गया था। श्वेत रक्तता कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर कहते हैं इसको आमतौर पर आम भाषा में, इट इज ल्यूकीमिया। जो व्हाइट सेल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी लाखों में चली जाती है, जो कि 10-11 हजार से ज्यादा नहीं होते। पर ml 1 ml के अंदर 11 हजार मैक्सिमम लिमिट है, वो लाखों में चले जाते हैं। तो इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। उसके बावजूद कह रहे हैं उसने अपने आप को इस तरह निमग्न कर रखा था कि प्रभुपाद और अन्य सभी भक्तों का अत्यंत प्रिय बन गया था। बीमारी की केयर नहीं ली, मैं तो बीमार हूँ जी, मैं तो नहीं कर सकता जी, मैं तो आराम करूँगा जी, मेरे को तो रेस्ट डॉक्टर ने बता रखा। नो, उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है? रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को भगवान की सेवा करते हुए मृत्यु सन्निकट दिखाई देती है तो उसको प्राथमिकता जो है भगवान की सेवा को देनी है, अपना जीवन बचाने को नहीं। और वो भगवान की सेवा को प्राथमिकता देता है तो उत्तम भक्त है। अगर जीवन बचाने की आशा करता है तो सेकंड कैटेगरी में आ जाता है, टॉप कैटेगरी में नहीं रहता। प्रभुपाद सवेरे के भ्रमण के लिए कार के सेंट्रल पार्क जाया करते थे। परिचित बस्तियों से गुजरते हुए उन्होंने 1965-1966 ईस्वी के दिन याद आते थे। एक दिन कीर्तनानंद स्वामी उनके साथ कार में गए। कीर्तनानंद ने कहा, मेरी सबसे अच्छी स्मृतियां उन प्रारंभिक दिनों की हैं श्री प्रभुपाद, विशेषकर उन सवेरे की कक्षाओं में जब आप अपने डेस्क के पीछे बैठते थे, सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश करती रहती थी, आप 1 घंटे तक व्याख्यान देते रहते। प्रभुपाद ने कहा, हाँ केवल हयग्रीव और तुम और प्रभुपाद ने कीर्तनानंद से उन प्रारंभिक दिनों के कुछ अन्य भक्तों का स्मरण किया। उमापति, काल ईयर जेन्स, जिम ग्रीन, राय राम, सत्स्वरूप, ब्रह्मानंद। प्रभुपाद ने कहा, उस समय कीर्तनानंद महाराज केवल 1 चपाती कहते थे। कीर्तनानंद महाराज, तमाम विष्णु ने पूछा, और कुछ नहीं? प्रभुपाद ने कहा, मैं देना चाहता था एक और लेते हैं दो बस। बाद में 1 दर्जन ए लड़का सहस्त्री सहस्त्रीश कम से कम 20 चपातियां खाता था। मैं कहता था और दो क्या? होता था हाँ, मैं 4 और देता था, 4 खत्म कर देता, मैं फिर 4 देता, 28 हो गई। ऐसे गिनना चपाती से जमीन से इतनी यहां तक चपातियों का ढेर होना चाहिए। कीर्तनानंद ने कहा, आरंभ में हम सभी प्रभुपाद की प्लेट से खाते थे। प्रसाद की 1 प्लेट होती थी, प्रभुपाद उसमें से थोड़ा थोड़ा हरेक को देते थे और हरेक संतुष्ट हो जाता था। प्रभुपाद ने कहा, मैं कुछ प्रसाद रखा करता था, जो कोई आता था उसको प्रसाद दे देता था। कीर्तनानंद ने स्मरण किया, कक्षा के बाद हमेशा प्रसाद बांटते थे, कीर्तन और कक्षा के बाद। प्रभुपाद ने कहा, हाँ मैं ताली बजाता था। बैठक में मैं $6 से कम नहीं इकट्ठा किया करता था, $20 से अधिक भी नहीं, सप्ताह में 3 बार। यद्यपि प्रभुपाद के लिए विजय की बात थी, उनके संघर्ष के प्रारंभिक दिन बीत चुके थे, किंतु वे जब उन्हें याद करते थे तो विशेष प्रकार की मधुर स्मृति में डूब जाते थे। उनके मनोभाव बदलते रहते थे, कभी कभी वे उनको मिला देते थे। असहाय अवस्था के दिन, कृष्ण पर नितांत निर्भरता के दिन, जब कोई उनके साथ नहीं था, तो उनका वर्तमान पारितोष का समय, जब वे सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों से घिरे थे, बीते हुए दिनों का स्मरण करते हुए उनके मूल लक्ष्य का अनुभव हो रहा था कि हमारे विश्वव्यापी प्रचार दीप स्तंभ का इस्कान निवारक होगा। सायंकाल में जब सूर्यास्त हो रहा होता था, श्री प्रभुपाद को गगनचुंबी इमारत की छत पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और उनके शिष्य उनके साथ बैठा करते थे। यद्यपि इमारत मिड टाउन में स्थित थी, पर चूंकि वे वेस्ट साइड में थी, इसलिए मध्य मैनहट्टन की तीव्रता से दूर होने का अनुभव कराती थी। प्रभुपाद मैनहट्टन के क्षितिज की ओर निहारा करते थे और हडसन नदी से चलने वाली ठंडी व्यार जुलाई की गर्मी कम कर देती थी। एक दिन संध्या समय कुछ शिष्यों ने नगर में चल रहे कुछ जघन्य कार्यकलापों का श्री प्रभुपाद से जिक्र किया। उन्होंने उन्हें वैश्यावृत्ति, श्री चित्र, निरंकुश अपराध जहित हिंसा और मांसाहारी लोगों की विचित्र प्रेत पूजा और संतों के बारे में बताया, जिनमें मानवीय भ्रूण का खाना भी सम्मिलित था। मानवीय भ्रूण क्या होता है? एम्ब्रियो नहीं, फीटस। एम्ब्रियो तो इतना सब बिल्कुल देखता नहीं, यू कांट सी। फीटस चाइना में, ताइवान में आज भी जो है, इंटरनेट लगाएंगे आपको मिलेगा। ये बच्चा जो है, उसको जब गर्भ गिराया जाता है तो बच्चे को फिर बॉइल करते हैं, उसको सूप बनाते हैं, सूप पिया जाता है, उनमें बोन्स खाई जाती है। यू कैन सी योर वीडियो, ऐसे ऐसे लोग हैं टोटली पाश्विक 100%। वो उन डेमन से ज्यादा है, और रावण जैसे डेमन जिसके हम नाम लेते हैं, बड़े बड़े डेमन्स का नाम लेते हैं, उनसे ज्यादा डेमन्स ये लोग हैं। लिमिट ही क्रॉस करते हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि हम वास्तव में पशुओं में प्रचार कर रहे हैं। चाइना में प्रचार हुआ है, जानते हैं चाइना के प्रचार का बेस्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रीचिंग इन चाइना? अंडरग्राउंड किया था, अंडरग्राउंड मतलब छुप के, ओपन नहीं था। यमुनाजी महाराज को तुर्कमेनिस्तान कहीं जाते हैं, फॉरेन कंट्री में, तो पेंट कोट पहन के जाते हैं, सर पे कैप लगा के जाते हैं, वी कांट गो इन भगवा। पर चाइना के प्रचार की जो बेस्ट रिजल्ट है वो क्या है? Is the best thing in that preaching. ये अकेली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने इस्कॉन की भगवत गीता का ट्रांसलेशन गवर्नमेंट लेवल पे किया, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया उसको। दिस इज ए वंडर कि वहां के प्रचार ने कितना बढ़िया फूल खिलाया है कि गवर्नमेंट ने बुक पब्लिश कर दिया। इट्स ग्रेट। मैंने सुना, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, पर मेरे को जो भक्तों ने बताया यही बताया है कि सर वहाँ पे जो महाराज से बात हुई थी, शायद बुक जो है चाइना की, ये चाइना गवर्नमेंट की प्रिंटिंग है। वो है कि नहीं है मैं नहीं जानता। एक रात छत पर रामेश्वर स्वामी ने श्री प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत के माध्यम से विश्व को जीतने की अपनी योजना उद्घाटित करने को कहा। विश्व को जीतने की, प्रभुपाद मौन हो गए। अंत में उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बता दूं तो बिगड़ सकती हैं। उन्होंने कहा, उनके पास योजना तो है किंतु वे अभी इसके लिए तैयार नहीं। अब योजना आप अगली बार सुनिएगा। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। भाई बहुत प्रेमानंद।